नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। CCNP एंड CCIE एंटरप्राइज कोर एंड कोर 350-401 ऑफिशियल सर्ट गाइड, ब्रैड एजवर्थ, रामिरो गार्जारियोस, जेसन गुली और डेविड हुकैबी द्वारा लिखी गई सिस्को प्रेस की प्रमाणन केंद्रित तकनीकी पुस्तक है। इसका दूसरा संस्करण एनकोर परीक्षा के उन मूल क्षेत्रों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाता है जो CCNP एंटरप्राइज और CCIE एंटरप्राइज दोनों मार्गों के लिए आवश्यक हैं। पुस्तक का विषय केवल रूटिंग और स्विचिंग तक सीमित नहीं है, यह एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, IPv6, रूटिंग प्रोटोकॉल, वायरलेस नेटवर्क आश्वासन, सुरक्षा और ऑटोमेशन को एक साझा परिचालन ढांचे में रखती है। इसका उद्देश्य पाठक को परीक्षा के उद्देश्यों से परिचित कराना और उन्हें वास्तविक नेटवर्क में तकनीक चुनने, लागू करने तथा समस्या समझने की आधारभूत क्षमता देना है। अध्यायों के आरंभ में स्वमूल्यांकन प्रश्न, महत्वपूर्ण विषय सूचियां और अंत के अभ्यास इसे निष्क्रिय पठन के बजाय योजनाबद्ध अध्ययन सामग्री बनाते हैं। इसकी विस्तृत प्रकृति के कारण यह प्रारंभिक नेटवर्किंग पुस्तक नहीं बल्कि पूर्व अनुभव और लैब अभ्यास के साथ उपयोग करने योग्य पेशेवर मार्गदर्शिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में टूल स्टैक और डिजाइन निर्णयों का संबंध। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण पक्ष एंटरप्राइज नेटवर्क को अलग अलग उपकरणों के संग्रह के बजाय एक आर्किटेक्चर के रूप में देखना है। इसमें कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट और सेवा स्तरों की भूमिका समझना आवश्यक बनता है, क्योंकि किसी डिजाइन का प्रभाव केवल पैकेट अग्रेषण पर नहीं पड़ता, वह सुरक्षा, उपलब्धता, संचालन और भविष्य के विस्तार को भी प्रभावित करता है। IPv4 और IPv6 के सह अस्तित्व अर्थात ड्यूल स्टैक पर चर्चा इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संगठन सामान्यतः एक ही दिन में IPv4 को हटाकर IPv6 नहीं अपनाते, इसलिए एड्रेसिंग, रूटिंग, नाम समाधान, सुरक्षा नीतियों और निगरानी में दोनों प्रोटोकॉलों की समानांतर उपस्थिति को समझना पड़ता है। पुस्तक यह आधार देती है कि संक्रमण को केवल एड्रेस बदलने की परियोजना मानना अपर्याप्त है। यदि IPv6 ट्रैफिक पर समान दृश्यता या नीति नियंत्रण नहीं है तो नया प्रोटोकॉल अनपेक्षित जोखिम का मार्ग बन सकता है। आर्किटेक्चर संबंधी सामग्री वायर्ड, वायरलेस, वैन और क्लाउड संबंधित परिवेशों के बीच निर्भरताओं को भी परीक्षा के संदर्भ में रखती है। इसका व्यावहारिक मूल्य यह है कि पाठक तकनीकी विशेषता याद करने के बजाय यह पूछना सीखता है कि वह विशेषता किस नेटवर्क समस्या को हल करती है। उसके संचालन की लागत क्या है और विफलता की स्थिति में उसका प्रभाव कहां तक जाएगा। दूसरा, OSPF, EIGRP और BGP के माध्यम से नियंत्रण तल की समझ। इंफ्रास्ट्रक्चर खंड में OSPF, EIGRP और BGP जैसे रूटिंग प्रोटोकॉल केंद्रीय स्थान रखते हैं। पुस्तक इनको केवल कमांडों की सूची के रूप में नहीं रखती बल्कि नियंत्रण तल के व्यवहार से जोड़ती है। राउटर को सही मार्ग की जानकारी कैसे मिलती है, पड़ोसी संबंध किन शर्तों पर बनते हैं, सर्वोत्तम पथ का चुनाव किन विशेषताओं से होता है और परिवर्तन के बाद नेटवर्क कितनी स्थिरता से अभिसरित होता है, ये प्रश्न रूटिंग की वास्तविक कठिनाई बताते हैं। OSPF में क्षेत्रीय संरचना और लिंक स्टेट सूचना का महत्व, EIGRP में पड़ोसी और मेट्रिक संबंधी तर्क तथा BGP में नीति आधारित पथ चयन अलग प्रकार की नेटवर्क आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, आंतरिक नेटवर्क में तेज और पूर्वानुमेय अभिसरण उपयोगी हो सकता है, जबकि बाहरी या बहु स्वायत्त प्रणाली संपर्क में मार्ग नीति को प्राथमिकता मिलती है। इसी कारण प्रोटोकॉल चुनना केवल लोकप्रियता का प्रश्न नहीं है। गलत समीकरण, असंगत पुनर्वितरण, अनुचित फिल्टरिंग या असममित मार्ग जैसे मुद्दे नेटवर्क में पहुंच संबंधी दोष पैदा कर सकते हैं। गाइड की परीक्षा केंद्रित संरचना इन अवधारणाओं को अलग पहचानने और समस्या निवारण के लिए आधार बनाने में मदद करती है। फिर भी कॉन्फ़िगरेशन को विश्वसनीय रूप से समझने के लिए पाठक को लैब में पड़ोसी विफलता, मार्ग परिवर्तन और नीति बदलाव के परिणाम देखना चाहिए। तीसरा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और विभाजन से विस्तार तथा अलगाव, आधुनिक एंटरप्राइज नेटवर्क में एक ही भौतिक अवसंरचना पर अनेक उपयोगकर्ता समूह, अनुप्रयोग और सुरक्षा क्षेत्र चल सकते हैं। पुस्तक वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क विभाजन को इसी परिचालन वास्तविकता के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। वर्चुअल लैन, वर्चुअल रूटिंग और फॉरवर्डिंग, ओवरले जैसी अवधारणाओं का मूल उद्देश्य संसाधनों को तार्किक रूप से अलग करना है, ताकि हर विभाग या सेवा को अलग भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता न पड़े। यह अलगाव केवल सुविधा नहीं है, इसका असर ब्रॉडकास्ट सीमा, मार्ग तालिका, पहुंच नीति और दोष के दायरे पर पड़ता है। मसलन, अतिथि उपयोगकर्ताओं, कॉरपोरेट कर्मचारियों और संवेदनशील अनुप्रयोगों को एक ही स्विचिंग ढांचे में रखते हुए भी उनकी पहुंच अलग रखी जा सकती है। लेकिन विभाजन अपने आप सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं देता। परतों के बीच गलत रूटिंग, ढीले फिल्टर या अस्पष्ट नीति से अलग किए गए क्षेत्र फिर जुड़ सकते हैं। इसीलिए गाइड में वर्चुअलाइजेशन को आर्किटेक्चर, रूटिंग और सुरक्षा के साथ जोड़कर पढ़ना अधिक उपयोगी है। एंटरप्राइज स्तर पर इसका दूसरा लाभ विस्तार क्षमता है। नई शाखा, नया अनुप्रयोग या क्लाउड कार्यभार जोड़ते समय तार्किक डिजाइन में बदलाव अक्सर भौतिक केबलिंग बदलने से तेज होता है। पाठक के लिए मुख्य सीख यह है कि वर्चुअल नेटवर्क का डिजाइन नामों और टोपोलॉजी से आगे बढ़कर स्पष्ट ट्रैफिक प्रवाह, नीति सीमा और संचालन दृश्यता पर आधारित होना चाहिए। चौथा, आईएसई, ट्रस्टसेक और नेटवर्क आश्वासन से नीति तथा दृश्यता, सुरक्षा और नेटवर्क आश्वासन को साथ पढ़ाना इस गाइड की व्यावहारिक विशेषता है। नेटवर्क सुरक्षा का लक्ष्य केवल किसी पोर्ट को बंद करना नहीं, बल्कि सही उपयोगकर्ता और सही उपकरण को संदर्भ के अनुसार उचित पहुंच देना है। आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, जिसे आईएसई कहा जाता है, पहचान और पहुंच नियंत्रण की ऐसी भूमिका को समझने का आधार देता है। ट्रस्टसेक जैसे ढांचे में पहचान आधारित नीति का विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति को केवल आईपी पते या स्थिर नेटवर्क स्थान से बांधना गतिशील उपयोगकर्ता वातावरण में सीमित हो सकता है। कर्मचारी का उपकरण, अतिथि उपकरण और प्रबंधित सर्वर एक जैसे नेटवर्क से जुड़े, फिर भी उनकी अनुमति समान नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, नीति तभी प्रभावी है जब संचालन दल सत्यापित कर सके कि नेटवर्क अपेक्षित ढंग से चल रहा है। नेटवर्क आश्वासन में टेलीमेट्री, लॉग, प्रदर्शन माप और दोष निर्धारण की सोच आती है। यह डेटा पैकेट हानि, विलंब, प्रमाणीकरण विफलता अथवा गलत पहुंच, नीति जैसी घटनाओं को अलग करने में सहायक होता है। पुस्तक का महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि सुरक्षा और संचालन अलग विभागीय विषय नहीं है। अत्यधिक कठोर नीति सेवा बाधित कर सकती है और अपर्याप्त निगरानी सही नीति को भी निष्प्रभावी बना सकती है। इसलिए पाठक को पहचान, विभाजन, प्रवर्तन और दृश्यता को एक सतत चक्र की तरह समझना चाहिए। अंत में, नेटवर्क ऑटोमेशन में नेटकॉन्फ, रेस्टकॉन्फ और पाइथन की भूमिका। ऑटोमेशन खंड यह स्पष्ट करता है कि बड़े नेटवर्क में उपकरणों को एक एक करके मैनुअल कमांड से बदलना धीमा और त्रुटिप्रवण हो सकता है। नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ जैसे प्रोग्राम योग्य इंटरफेस तथा पाइथन स्क्रिप्टिंग नेटवर्क को सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ने और बदलने की दिशा देते हैं। यहाँ प्रमुख विचार केवल स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन और परिचालन स्थिति को संरचित डेटा के रूप में देखा जाए, ताकि दोहराए जाने वाले कार्यों को मानकीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए, बहुत सी शाखाओं में एक समान नीति लागू करनी हो, उपकरणों से इंटरफेस स्थिति लेनी हो या इच्छित कॉन्फ़िगरेशन से अंतर पहचानना हो, तो प्रोग्रामेटिक तरीका समय बचा सकता है और निरंतरता बढ़ा सकता है। फिर भी ऑटोमेशन गलत डिजाइन को सही नहीं बनाता। एक दोषपूर्ण टेम्पलेट या गलत अनुमति यदि स्वचालित रूप से व्यापक स्तर पर लागू हो जाए तो उसका प्रभाव भी व्यापक होगा। इसलिए संस्करण नियंत्रण, परिवर्तन समीक्षा, सीमित परीक्षण, प्रमाणीकरण और वापसी योजना जैसी अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं जरूरी हैं। गाइड की परीक्षा तैयारी के भीतर यह विषय नेटवर्क इंजीनियर की बदलती भूमिका को दर्शाता है। उसे पारंपरिक प्रोटोकॉल ज्ञान के साथ API, डेटा मॉडल और स्वचालित कार्य प्रवाह की बुनियादी समझ भी चाहिए। यह संयोजन नेटवर्क को अधिक सुसंगत और मापनीय बनाने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन नेटवर्क इंजीनियरों, प्रशासकों और अनुभवी IT पेशेवरों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एनकोर 350-400 एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एंटरप्राइज नेटवर्किंग के व्यापक मूल क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहते हैं। CCNP एंटरप्राइज अथवा CCIE एंटरप्राइज मार्ग पर आगे बढ़ने वाले पाठकों को इसमें परीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप विषय क्रम, स्व मूल्यांकन और अध्यायांत अभ्यास विशेष उपयोगी मिलेंगे। यह उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त है जिनके पास IP नेटवर्किंग, कमांड लाइन और बुनियादी रूटिंग स्विचिंग का अनुभव नहीं है। उनके लिए पहले आधारभूत सामग्री और छोटा लैब वातावरण अधिक उपयुक्त रहेगा। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता इसकी व्यापकता में है। यह रूटिंग, सुरक्षा, वर्चुअलाइजेशन, आश्वासन और ऑटोमेशन को अलग अलग तकनीकी द्वीपों की तरह नहीं रखती, बल्कि उन्हें एक एंटरप्राइज परिचालन संदर्भ में जोड़ती है। इसी वजह से पाठक को केवल परीक्षा प्रश्नों के लिए तथ्य नहीं, बल्कि डिजाइन निर्णयों और समस्या निवारण के पीछे का ढांचा भी मिलता है। समान श्रेणी की कई अध्ययन पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर सिस्को अनुमोदित ऑफिशियल सर्ट गाइड होना, नवीन परीक्षा विषयों के लिए अद्यतन दूसरा संस्करण होना और अध्ययन योजना के साथ आकलन साधन देना है। फिर भी इसे अकेला समाधान नहीं मानना चाहिए। अवधारणाओं को स्थायी कौशल में बदलने के लिए वास्तविक या अनुकरणीय लैब में कॉन्फ़िगरेशन सत्यापन और विफलता विश्लेषण अनिवार्य हैं। पर्याप्त समय और अनुशासित अभ्यास के साथ यह पुस्तक परीक्षा तैयारी और कार्यस्थल संदर्भ दोनों के लिए मजबूत आधार बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रैड एजवर्थ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।